ओम शांति। आज के इस संध्याकालीन सत्र में आप सभी का और आप सभी के तरफ से आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। दीदी जी, वैसे अभिराम भाई जी ने थोड़ा परिचय दिया, दीदी जी की विशेषताओं के बारे में कितना ही कहें या बताएं, ऐसा ही है जैसे सूरज को दीपक दिखाना है। दीदी जी एक संयुक्त परिवार में पली बढ़ी और 1962 में आप ईश्वरीय ज्ञान में आई। साकार बाबा के साथ, मम्मा के साथ आपका सानिध्य रहा, आपको पालना मिली। दीदी की दो बातें मैं शुरू में बता देना चाहता हूं। दीदी जी को जब विदेश सेवा में गई तो कई वर्षों तक अकेली विदेशों में भ्रमण करती रही, एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश। तो बड़ी दादी ने दीदी को शेरनी की उपाधि दी थी, कैसी जंगल में शेरनी जैसे घूमती है, ऐसी दीदी विदेशों में सेवा करती रही। बाबा ने एक बार कहा था दादी जी को कि दीदी जैसे अगर 21 कुमारी मिल जाए तो चुटकी में स्वर्ग ला दूं। मैं पिछले दिनों दीदी से पूछा था कि दीदी वो 20 कहां है अभी तक, तो हो सकता है समय रहे तो दीदी लास्ट में इसका उत्तर देगी। उसके पूर्व आज जैसे कि हमारा ये सत्र है यज्ञ संस्मरण के बारे में, आपने साकार बाबा को देखा, मम्मा को देखा, हम सब जैसे जनवरी मास नजदीक आता है तो बाबा की स्मृति मानस पटल पर अंकित होने लगती, उभरने लगती है। कैसे थे बाबा का जीवन, कैसे पालना करते थे, कैसे मिलते थे, तो बड़ी बड़ी बातें हम सुनते रहते हैं। लेकिन आज मैं दीदी से बहुत छोटी छोटी बातें, घरेलू बातें यज्ञ की, वो मैं दीदी से पूछना चाहूंगा। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि दीदी जी वो सब देखी है। तो दीदी जी अपने आंखों देखा हाल 1962 से, किस तरह से बाबा को देखा, मम्मा को देखी, वो सब हमारे सामने अपने संस्मरण अनुभव युक्त सुनाएगी। पहला प्रश्न है दीदी जी से, दीदी आप 1962 में ज्ञान में आई, तत्पश्चात आप बाबा से पत्र विहार करती थी, क्या क्या लिखते थे बाबा को और बाबा का क्या जवाब आता था?
ओम शांति। मैं जब ज्ञान में आई तो मैं समझती हूँ एक मास में हमको दादियों ने, क्योंकि मैं बम्बई में थी और हमारे सामने बहुत दादियां थी, रतन मोहिनी दादी, शीलेंद्रा दादी, पुष्प शांता दादी, निर्मल शांता दादी, और 64 से प्रकाशमणि दादी, सबके पालना मिली। तो जब मैं ज्ञान में आई तो पहले दादियों ने सजेस्ट किया कि अपना परिचय बाबा को लिखूं, तो इसलिए एक मास के अंदर हमने अपना परिचय दिया कि बाबा मैं आपकी बच्ची बनी हूं, मैं हमारी उम्र इतनी है, हमने ये MBBS पढ़ाई पढ़ी है आदि आदि अपना परिचय लिखा। फिर एक आध मास के बाद कहा आप अपनी कर्म कहानी बाबा को लिखकर भेजो। तो हमने कर्म कहानी लिखकर भेजी। तो उन दिनों में क्या होता था, हम पत्र लिखकर दादियों को देते थे और दादियां या बाय पोस्ट भेज देती थी या कोई बाय हैंड डिलीवरी करती थी, कोई दादी जा रही थी तब भेजती थी। तो जैसे मेरा दूसरा पत्र है वो हमने रतन मोहिनी दादी से भेजा, वो जा रही थी मधुबन और उनके हाथ भेजा। फिर जब दादी वापस आई तो कहा कि बाबा ने आपका पत्र पढ़ते ही जैसे कि बाबा के सामने आप आ गई, क्योंकि वैसे पत्र के साथ हम अपना पासपोर्ट साइज का फोटो भी भेजते थे ना, परिचय लिखते थे। तो और दादियों ने कुछ कमेंट भी लिखी होंगी। तो बाबा जब भी पत्र लिखते थे नेचुरली सेंटर पर लिखते थे, उसमें बाकी सब बातें लिखकर हमारा नाम भी आ जाता था। तो उस समय शुरू में पुष्प शांता दादी थी इंचार्ज वॉटरलू मेंशन में। तो वो फोन करती थी, निर्मला आज तुमको बाबा ने याद किया। तो सिर्फ हमारा नाम ही होता था पर इतना नशा चढ़ जाता था, बाबा ने हमको याद किया। फिर जब मैंने सेंटर खोला 66 में मैंने सेंटर खोला और तब से जब सेंटर खोलती थी तो फिर नेचुरली है बाबा को मैं खुद समाचार लिखती थी। तब बाबा का जैसे कि फुल पेज का हमको पत्र आता था। और बाबा का पत्र आप सभी ने देखा होगा ना, बड़े बड़े लाल अक्षर पेन से लिखते थे और इशू दादी फिर उस पर हिंदी में लिखती थी, क्योंकि बाबा तो सिंधी में लिखते थे और सिंधी अक्षर भी सिंधी वालों को समझ में नहीं आते थे। इसलिए सिंधी में भी जो लिखते थे ना तो भी इशू दादी को फिर सिंधी में उसका प्रॉपरली लिखना पड़ता था। तो बाबा लिखते थे तो शुरू शुरू में कुछ न कुछ टाइटल लिखते थे
जी,
सरल है, निर्मल है, निर्माण चित हो आदि आदि। तो क्योंकि बाबा था वो हर एक की रग को जानता था, ये बाबा की विशेषता थी कि वो 5 मिनट में व्यक्ति को देखकर उसको परख जाते थे, अंदर क्या है, बाहर क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है। क्योंकि कई बार ऐसे होता था कि जो निमित्त टीचर थी जब अपने स्टूडेंट को लाती थी तो कभी कभी स्टूडेंट है वो शुरू शुरू में बहुत सर्विसेबल होते हैं तो टीचर उसका प्रशंसा करती थी बाबा को कि बाबा ये तो बहुत अच्छा है, सर्विसेबल है, ये है वो है। फिर वो टीचर के बाद बाबा के साथ जो दादी होती थी ना उसको बाबा कमेंट करते थे ये चलने वाला है या नहीं चलने वाला। तो जो मेरे बारे में भी प्रकाशमणि दादी को बताया, मेरे सामने नहीं बताया, मेरे पीछे बताया कि ऐसी 21 नहीं पर 30 कुमारियां
अच्छा
मुझे मिल जाए तो मैं चुटकी में स्वर्ग बना दूं
जी।
परंतु अभी तक स्वर्ग नहीं बना है,
क्योंकि वो 24 नहीं मिले हैं दीदी अभी तक।
अभी तक स्वर्ग नहीं बना है, मतलब बाबा को अभी मेरे जैसी 30 कुमारियां नहीं मिली।
बहुत गर्व है कि यज्ञ का पहला मकान, आप सबको जानकारी हो कि दीदी के पिताजी ने बाबा को बना करके दिया था पहला मकान, बना बनाया मकान। ये पूरे यज्ञ इतिहास में पहला मकान था जो दीदी के लौकिक पिताजी ने बाबा को बना बना करके पूरा कंप्लीट करके दिया था। दीदी आपने बहुत सुंदर बातें आप बताई कि किस तरह से बाबा को पत्र लिखते थे और बाबा अनेक उपाधियों से आपको विभूषित करते थे। दूसरा प्रश्न है दीदी, जैसे अभी मुरली से पहले हम देखते हैं स्टेज पर मधुबन में या सेंट्रो में एक भाई या एक बहन योग कराते हैं या दो भाई योग कराते हैं, बाबा के समय क्या होता था? बाबा जब मुरली सुनाने आते थे तो उस समय क्या प्रथा थी दीदी?
ओम शांत। उस समय भी कोई न कोई योग कराता था, और यदि मम्मा मधुबन में होती थी
जी,
तो बाबा के आने के पहले मम्मा मुरली चलाती थी।
अच्छा।
और जैसे ही मम्मा सुनती थी बाबा का खड़ाव का आवाज क्योंकि बाबा खड़ाव पहन के आते थे ना
जी,
तो खड़ाव का आवाज आता है, मम्मा बंद कर देती थी और योग कराती थी, और मम्मा यहाँ बैठी है, बाबा यहाँ बैठा है, बाबा मुरली चलाते थे, मम्मा बैठी रहती थी, और मम्मा बहुत ध्यान से मुरली सुनती थी। यहाँ से सामने बैठना माना ऐसे देखना ना, तो सारा समय एक टिक ऐसे बैठकर बाबा की मुरली बहुत ध्यान से सुनती थी। तो जैसे कि बाबा तो भी बड़े स्ट्रिक्ट टीचर थे, हमेशा उनका एम रहता था कि स्टूडेंट टीचर के पहले आ जाए। तो क्या होता था, बाबा आने के 6-5 मिनट पहले आप देखेंगे सब आंगन में दौड़ते दौड़ते पहुंच जाते थे कि बाबा के पहले पहुंच जाए।
जी दीदी।
और उन दिनों में तो सब यंग थे, तो क्या करते थे कि हिस्ट्री हॉल में, हिस्ट्री हॉल ही था, तो हिस्ट्री हॉल में किसी को भी दीवार को टेक कर नहीं बैठना।
अच्छा।
कोई सोफा, उन दिनों में सोफा कुर्सी कुछ नहीं
जी,
सबको पट में बैठना होता था। और कई बार मुरली के पहले बाबा कमरों में चक्कर लगाते थे कि सब उठकर क्लास में गए हैं और उठकर अपनी बेड वगैरह ठीक बना के गए हैं
जी।
ऐसे नहीं के चद्दर इधर उधर फेंक कर, कपड़े इधर उधर फेंक कर गए, नहीं, रूम भी साफ होना चाहिए। तो बाबा कभी कभी रात को भी चक्कर लगाते थे कि सब कैसे सोए, सात्विक नींद है, राजसिक नींद है, तामसिक नींद है, उनके चेहरे से बाबा को मालूम पड़ जाता था कि शांत चित्त है, हर्षित चित्त है, या कुछ सोचते हैं आदि आदि। तो बाबा बच्चों की शिक्षा भी देते थे, सावधानी भी देते थे, तो प्यार से पालना भी करते थे, इसलिए सभी का बाबा से प्यार भी था। तो बाबा नाराज ना हो उसके ऊपर बहुत ध्यान देते थे।
दीदी, जैसे हम सुनते हैं कि मम्मा एवं बाबा सभी ब्राह्मणों को भाकी पहनते थे या गोद में बिठाते थे, जानना चाहते दीदी क्या इस तरह का होता था कि एक एक को बाबा जैसे भाकी पहनते थे पार्टी वालों से, एक एक बच्चों को इस तरह का प्यार देते थे?
उन दिनों में तो पार्टी में ज्यादा से ज्यादा 20-25 होते थे
जी।
तो हम लोग क्या करते थे, मधुबन में पहुंचते ही स्नान करके पहले बाबा के कमरे में जाते थे, बाबा से मिलते थे। और उस समय जब पहली बारी मिलते थे तब गोद में बिठाते थे।
अच्छा।
और जब छुट्टी लेते थे तब भाकी पहनते थे, क्योंकि तब हम ऑफिस में बाबा से छुट्टी लेते थे
जी।
तो गो सुन कम सुन की टोली देते थे
जी।
और भाकी पहनते थे।
सचमुच दीदी आप सब भाग्यशाली हैं, बाबा से गले मिले हैं और बाबा एक एक को गोद में बिठाते थे, कितनी बड़ी बात है। सुनते तो थे लेकिन प्रैक्टिकल में आज पहली बार ऐसा सुनने को मिला कि एक एक बच्चों से बाबा इस तरह के पालना प्यार देते थे। दीदी जैसे आपने बता दिया कि साकार में बाबा और मम्मा दोनों पार्टी वालों से मिलते थे, जैसे क्या रूपरेखा होती थी दीदी, उसी समय सबसे लाइन से मिल लेते थे या फिर एक एक बच्चों से मिलते थे या एक ही बार सबसे मिलते थे?
यूजुअली पहले दिन जैसे पार्टी बैठकर
जी
बाबा के कमरे में मिलते थे।
अच्छा।
फिर किसी को पर्सनली मिलना होता था
जी
तो टीचर हम बहने ले जाते थे।
अच्छा।
फिर निकलने के पहले एक बार गिफ्ट के लिए मिलते थे
जी
कमरे में, बाबा गिफ्ट देते थे।
बाबा अपने हाथों से ही देते थे दीदी, सबको एक एक अपने हाथों से गिफ्ट देते थे।
हाँ। और छोटा ग्रुप होता था उस समय, तो अभी तो हजारों की संख्या में लोग हाँ। आते हैं
जी, जी, जी।
उस समय तो छोटा ग्रुप होता था और ज्यादातर एक बार ब्रह्मा भोजन होता था
जी।
तो ब्रह्मा भोजन हिस्ट्री हॉल में या छत पर
जी,
हिस्ट्री हॉल के ऊपर
जी, जी।
खुला छत उस वहां पर होता था और सब जैसे नीचे बैठकर
पट में दीदी नीचे
हाँ। सामने सामने बैठकर भोजन करते थे। मम्मा को तो मैं बंबई में ही मिली, मैं कभी मधुबन में नहीं मिले
जी, 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 जी।
क्योंकि मैं 62 के एंड में आई और मोस्ट द टाइम मम्मा बंबई में थी
जी,
बंबई और बीच बीच में पूना चक्कर लगाती थी कभी कभी। तो मम्मा को मैंने कभी मधुबन में नहीं देखा
जी, 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 जी।
और जब छुट्टी लेते थे तब मिलते थे तो समझो कम से कम 3 बारी पार्टी बाबा से मिलती थी।
जब ब्रह्मा भोजन होता था दीदी उसमें बाबा साथ होते थे सबके?
जरूर।
अच्छा।
जरूर ब्रह्मा बाबा सामने बैठते थे
जी।
हम लोग ऐसे लाइन में बैठते थे
जी, 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 जी।
तो जहाँ जैसे गद्दी है उस वहाँ ब्रह्मा बाबा बैठते थे
जी, साथ में सबके बीच में भोजन करते थे दीदी। सचमुच बहुत पालना किए लिए हैं दीदी आप सब। दीदी अगला प्रश्न है, आप जैसे बताइए कि बाबा से पहले आप मम्मा से मिली और मम्मा से बहुत पालना ली है दीदी ने, ये कितने सीखने की बात है। दीदी ने एक बार बताया था कि मम्मा से कुछ भी बात दीदी पूछती थी तो मम्मा कहती थी बाबा को पत्र लिखो, ये जैसे आजकल बहुत सीखते हैं, सीखने की बात है कि हम हर बात को जैसे बाबा तक पहुंचाएं। आपने मम्मा को देखा दीदी, मम्मा को संपूर्ण होते भी देखा, मम्मा की ऐसी क्या छवि थी जिसमें विशेष ध्यान जाता था मम्मा के ऊपर?
मम्मा बहुत धीर, गंभीर और मीठी थी। सचमुच कुमारी होते भी माँ का पार्ट बजाया, तो माँ की ममता जैसे होती है ना, कितना भी हो छोटे बच्चों को माँ से ज्यादा प्यार होता है। तो हमको भी भल मम्मा से हमको 2-2.5 साल ही मिलना हुआ
जी,
परंतु हमें मम्मा से विशेष प्यार था। और जब क्योंकि ये यहाँ की विशेषता है कि चाहे कितने भी बड़े हैं, हम कितने भी छोटे हैं, हम मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं।
जी,
देखो दुनिया में साधु संत महात्मा थे और जो भी होके गए हैं, जैसे साईं बाबा बहुत प्रसिद्ध थे। किसी को मिलने का पर्सनली थोड़ी चांस मिलता था, सभा में चलते चलते आशीर्वाद दे दिया, कोई प्रश्न बात पूछ नहीं सकते थे। लेकिन हमने जब ज्ञान में आने के बाद 3-4 मास के बाद मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा मैं मेडिकल प्रैक्टिस करना नहीं चाहती हूँ, सरेंडर होना चाहती हूँ, सरेंडर हूँ। मम्मा ने कहा, नहीं, ब्रह्मा बाबा से मिलो ना तब पूछना। तो ज्ञान की बातें हैं या मम्मा क्लियर करती थी। 7 दिन के कोर्स के बाद मैंने मम्मा से प्रश्न पूछा, मम्मा ने ही पूछा, सब ठीक ठाक, ज्ञान योग समझ में आता है, कोई प्रश्न है? तो मैंने कहा कि मम्मा, क्राइस्ट की आत्मा जब पहले आई सत्वप्रधान थी, कृष्ण की आत्मा भी पहला जन्म में सत्वप्रधान थी, तो उन दोनों में क्या अंतर? तब मम्मा ने क्लियर किया कि क्राइस्ट की आत्मा द्वापर युग की सत्वप्रधान थी
जी,
और कृष्ण की आत्मा सत्ययुग की, माना जन्म से सत्वप्रधान थी। तो जैसे मम्मा ज्ञान योग के प्रश्न जवाब दे देती थी, बाकी जीवन का जो फैसला करना होता था तो ब्रह्मा बाबा से करना होता था।
जी 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 दीदी, तो सचमुच मम्मा की बहुत बड़ी विशेषता थी कि जो भी बड़े डिसीजन होते थे कोई भी दीदियों के, बहनों के, तो बाबा तक पहुंचा देते थे। दीदी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने साकार बाबा को देखा यहाँ मधुबन में, बाबा की दिनचर्या कैसी रहती थी सुबह से लेकर शाम तक? किस तरह की दिनचर्या रहती थी दीदी, सुबह उठना से लेकर के नाश्ते लेकर दोपहर तक, शाम को, रात को कितने बजे सोते थे? थोड़ा हम वो दृश्य देखना चाहते हैं दीदी।
बाबा की दिनचर्या काफी फिक्स होती थी। सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करते थे, रात में भी उनका जो सोना था ना, बहुत लाइट नींद होती थी, क्योंकि अभी भी जो बाबा का कमरा है दरवाजे के बाहर आप देखेंगे तो कई बहनों का कमरा भी होता था
जी।
तो यदि कोई बहने रात में भी टॉयलेट जाना है, इधर उधर जाना है, यदि वहां से पास होती थी तो बाबा पूछते थे, कौन आया है बच्ची? ठीक है सब, रात में उठते हैं तो
जी।
फिर सवेरे उन दिनों में अमृत वेला साथ में नहीं होता था
जी।
68 मई तक सब अपने अपने कमरे में अमृत वेला करते थे। तो बाबा भी अपना विचार सागर मंथन कमरे में करते थे, मुरली की तैयारी करते थे। तो सवेरे अमृत वेले मुरली, मुरली के बाद बाबा के कमरे में चैम्बर होती थी। कई दादियां क्या करती थी, बाबा के पास जाकर कहती थी, बाबा आज आपने ये मुरली की पॉइंट बहुत अच्छी समझाई। तो वो समझो चैम्बर में मुरली का मंथन चलता था
जी।
फिर कभी कभी बाबा पैदल करते थे।
अच्छा।
मुरली के बाद
जी,
क्योंकि हम पुराने एकदम दिनों की बात नहीं करती थी, मैं अपने दिनों की
जी,
बात
जी,
करती हूँ, क्योंकि पुराने दिनों में तो बैगरी पार्क में
जी
माउंटेन पर घुमाने ले जाते
बाबा, पहाड़ी पर ले जाते थे दीदी। आपको भी कभी लेकर के गए दीदी एक आध बार? आपको लेके नहीं गए?
तो वो पैदल करते थे और पीछे किचन में चक्कर लगाते थे
जी।
उनका भी टाइम फिक्स होता था, हम सभी को मालूम होता था
बाबा किचन
के, बाबा किचन में कब आएंगे। तो हम लोग क्या करते थे, बाबा के रास्ते में खड़े हो जाते थे या तो किचन में मदद करते थे
जी 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 जी।
तो बाबा भी आकर दृष्टि देते थे, कैसे हैं, क्या है बोलते थे। और समझो नाश्ते के बाद फिर कंस्ट्रक्शन देखने जाते थे
जी 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 जी,
क्योंकि उन दिनों में भी कंस्ट्रक्शन तो यज्ञ में चलता ही आया है
जी।
नए नए मकान बनते ही रहे तो जो भी रास्ते में मिलता था बाबा अपना कुछ न कुछ जो विचार सागर मंथन किया होता था वो सुनाते थे
जी।
फिर बाबा पोस्ट लिखवाते थे ऑफिस में ईशु दादी को, उषी दादी सिलेक्ट करती थी
जी।
और बाबा को मुरली की जो जो पोस्ट आई थी उसका सुनाती थी और बाबा उनको लिखवाते थे, क्योंकि 10:15 बजे पोस्ट कोई ना कोई भाई है वो लेके पोस्ट ऑफिस में
जी
डाल के आता था
जी जी जी।
उसके बाद बाबा गर्मियों के दिन में अपनी झोपड़ी में बैठते थे और सर्दी के दिन में अपने कमरे में
जी।
तो जिनको भी पर्सनली मिलना होता था उनको बाबा या तो कमरे में सर्दी के दिनों में, गर्मी के दिन में झोपड़ी में मिलते थे
जी।
और आप लोगों ने सुना होगा कि जब झोपड़ी में बैठते थे एक चिड़िया रोज आती थी और बाबा कहते थे लच्छू दादी बाबा की ब्राह्मणी थी, लच्छू बेटा इस बच्ची को टोली खिलाओ। मतलब चिड़िया भी बच्ची, लच्छू भी बच्ची। तो इसलिए रोज टोली खिलाते थे तो रोज वो चिड़िया आती थी और टोली खाती थी
जी।
ठंडी के दिनों में भी बाबा जब चक्कर लगाते थे देखते थे कि कोई लेबरर के पास गरम कपड़ा नहीं है, फौरन लच्छू को कहेंगे, लच्छू बेटा इसको, इस बच्चे को गरम स्वेटर दो। तो तब से ये रस्म हुई है, हर सर्दी में यहाँ हर लेबर को ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट मिलता है।
तीनों कॉम्प्लेक्स में दिया
अभी तक ये रस्म चालू रही है। क्यों? बाबा को ख्याल होता था कि यहाँ की सर्दी माउंट की कितनी है, तो लेबरर को ब्लैंकेट जरूर देना है। फिर बाबा 12 बजे के करीब क्या करते थे, हमारा भोजन जल्दी 12 बजे हो जाता था, और बाबा उस समय कोई ऐसे ऐसे होते थे ना बच्चे, ताश खेलने आते थे या चौपट खेलने आते थे।
अच्छा,
तो वो हमेशा उसकी मांग रहती थी कि बाबा हम आवे ताश खेलने। तो हम भी कभी कभी क्या करते थे, बाबा के कमरे का पर्दा होता था, जरा ऐसे करते थे, बाबा कहेंगे आओ बच्ची आओ बच्ची। तो हम खेलते तो नहीं थे, परंतु ऑब्जर्वर के रीति से बैठते थे, देखते थे। और अपनी भुवनेश्वर की दादी, क्या नाम,
संदेशी
दादी, वो हमेशा चौपट खेलती थी, और ब्रिजमोहन भाई ताश खेलते थे।
जी जी जी, जी।
तो ब्रिजमोहन भाई भी सुनाते हैं ना कि एक दिन बाबा की को थोड़ा बुखार था, तो इसलिए बुलाया नहीं, तो ब्रिजमोहन भाई ने लच्छू दादी को कहा कि मैं आऊं ताश खेलने। तो बाबा बीमार था, फिर भी जब ब्रिजमोहन भाई ने पूछा तो कहा आओ बच्चे आओ।
जी 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 जी।
तो क्या है कि बाबा चाहते थे बच्चों से खेले भी, कभी बैडमिंटन भी खेलते थे, कभी बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेलते थे, ताश भी खेलते थे, चौपट भी खेलते थे, और झूले में भी बैठते थे। आपने देखा होगा दादियों का बाबा के साथ झूले में बैठना। यहाँ पांडव भवन में झूला था उन दिनों में, जहाँ रतन मोहिनी दादी की ऑफिस वगैरह है, तो किचन वहां था, झूला यहाँ था। तो बाबा चाहते थे बच्चे खुश रहें, बच्चों को भाषना आवे कि तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से खेलूं आदि। मुझे याद है बाबा के साथ हमने भोजन किया
जी।
ब्रह्मा बाबा के कमरे में सिगड़ी रहती थी
जी,
तो गरम गरम रोटी लच्छू बनाकर खिलाती थी
जी।
और हमको भी बाबा ने गिट्टी खिलाई थी
जी, 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 जी।
तो जैसे बाबा हरेक को भाषणा देते थे।
दीदी दोपहर को बाबा रेस्ट करते
और शाम को आराम करते थे, उनका भोजन 1-2 बजे के पहले नहीं होता था।
अच्छा, जी।
उसके पहले अपना विश्व रतन भाई उनका मालिश करता था, स्नान करते थे, भोजन करते थे, फिर आराम करते थे, फिर 5:30 बजे फिर अपना जो आंगन था ना, क्योंकि बाबा के कमरे के बाहर 3 तरफ दीवार होती थी
जी।
वहाँ खटिया रहती थी।
हाँ।
तो उस पर बैठकर वो विष्णु के पोज में बाबा लेटे रहते थे, और हम दो बहनें मिलकर जाती थी, अकेले नहीं जाते थे कभी। तो बाबा कहेंगे आओ दो हंसों का जोड़ा। और फिर जो अपना मनन मंथन करते थे सुनाते थे। फिर बाबा रात्रि क्लास जरूर कराते थे
जी।
तो रात्रि को भी 8:30-9 बजे आधा घंटा क्लास होता था। और बाबा क्लास में देखते थे कौन ध्यान से सुनते हैं, कौन नहीं ध्यान से सुनते।
जी 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 जी।
और कहते थे कि सामने बैठने वाले ऐसे ऐसे करे तो सुनाने वाले को मजा आएगा। कहते थे ना डांसिंग गर्ल कब एंजॉय करती है, जो देखने वाले अप्रिशिएट करते हैं। तो इसलिए सामने बैठने वालों को बहुत अलर्ट होकर बैठना पड़ता है। कोई झुटका खाया या उबासी खाई, बाबा कहते हैं इसका मतलब इसको इतना मुरली में रस नहीं आता।
जी दीदी बहुत
अच्छी। रात को 10 बजे तक सो जाते थे।
जी दीदी सबके सामने दृश्य आ गया बाबा का दिनचर्या। जैसे बाबा के सामने सब सिर हिलाते थे दीदी, आपके सामने भी सब हिला रहे हैं सिर, अलर्ट होके बैठे हैं। अमृत वेला का टाइम तो आपने बताया दीदी, 3:30 का टाइम उस समय फिक्स नहीं था। दीदी अगला प्रश्न है कि बाबा ब्रह्मा बाबा के बारे में कई बार हम मुरलियों में सुनते हैं कि गांव का छोरा था, गाय चराते थे, नंगे पैर घूमते थे, सिर में पटका बांधते थे और ऐसी कई बातें सुनते हैं। ब्रह्मा बाबा की आत्मा, श्री कृष्ण की आत्मा, अंतिम जन्म में इस तरह का सीन, और कोई बात आपने बचपन की सुनी हो दीदी बाबा के बारे में दादियों से, और या इसके पीछे क्या रहस्य है?
मतलब बहुत साधारण जीवन था
जी।
नंगे पांव घूमते थे, गांव के छोरे थे। और उनके लौकिक पिताजी स्कूल टीचर थे
जी दीदी।
तो उन दिनों में स्कूल टीचर को बहुत रिगार्ड देते थे
जी।
कई बार स्कूल टीचर को घर में अनाज भी भेज देते थे ना, गुरु के लिए भावना होती है
जी।
और बाबा कहते हैं कि उन दिनों में अनाज भी बहुत सस्ता था। एक आने मन गेहूं चावल आदि थे
जी।
तो स्कूल टीचर के नाते कभी कोई दूध पहुंचाता था, कोई अनाज पहुंचाता था और बहुत उनका रिगार्ड रहता था। और उनका चाचा मूलचंद चाचा का भी बाबा कई बार वर्णन करते हैं, बहुत दानी था और दान करता था। हाँ तो जब बाबा बड़े हुए तो उन्होंने जवाहरत का धंधा पसंद किया और उसमें बहुत सक्सेसफुल रहे। उनके पास क्रिएटिविटी थी, नए नए डिजाइन की
जी।
वो सब अंगूठी, एयरिंग, नेकलेस, हाथ के कंगन आदि बनाते थे। और उसके साथ साथ क्या करते थे कि घर वालों को पहले पहनाते थे, बेचने के पहले घर वालों को पहना कर पीछे बेचते थे
जी।
तो समझो घर वालों को भी नशा रहता था। और आपने सुना होगा कि काफी युक्तिबाज थे क्योंकि एक बारी दुकान से चोरी हो गई
जी।
अभी चोर को कैसे पकड़े तो मारपीट करके नहीं, परंतु चालाकी से कहा कि चलो जिसके ऊपर शक आया वो बच्चों को कहा चलो मैं आपको नया शर्ट दूंगा, आपने हीरे कहाँ रखे हैं बताओ। तो बच्चों ने बता दिया और सचमुच उन बच्चों को शर्ट लेकर दिया, मतलब कि अपना काम भी निकाल लेते थे
जी।
तो साथ साथ लड़ाई झगड़ा या गुस्सा करने की बात नहीं थी
जी। दीदी ब्रह्मा बाबा जैसे बचपन की बातें हम सब सुनते हैं, बड़े हुए उसके बाद का जीवन, लंबा इतिहास है बाबा के जीवन का। दीदी एक प्रश्न है, किसी ने पूछा है कि बाबा के समय खान पान की व्यवस्था कैसी थी? यहाँ तो पकोड़ा बनता है, हलवा बनता है, पनीर की सब्जी बनता है, मना ब्रह्मा भोजन हो गया। उस समय क्या खान पान में कैसा रहता था दीदी? मतलब क्या सिंपल रहता था कि कुछ ये सब भी वैरायटी भी खिलाते थे बाबा?
शुरू शुरू में जब यज्ञ में सब पैसा लेके आए
जी,
तो काफी यज्ञ अच्छा था
जी,
तो शुरू शुरू में तो माल पानी खिलाया बादाम पिस्ते की मिठाई खिलाने
जी,
रेशमी कपड़े सबको मिले, नाइट ड्रेस वगैरह रेशमी मिले
जी जी जी।
परंतु जब बेगरी पार्ट आया तो उस अनुसार हुआ, हर एक को अपना फिक्स बताना है, एक रोटी खाना है तो एक रोटी ही खाना है
जी,
दो रोटी खाना है तो दो ही खाना है ताकि रोटी बच न जाए, फेंक ना देनी पड़े
जी।
तो इसलिए सबका फिक्स खाना था। और यदि कोई कहे कि मुझे खीर अच्छी नहीं लगती, मुझे पापड़ चाहिए, तो वो समझता था कि मैं त्याग करता हूँ खीर का और पापड़ सिंपल है वो खाता हूँ। परंतु बाबा कहता था ये भी लालच है, लोभ है, ये अच्छा नहीं लगता वो चाहिए
जी,
ये नहीं होना चाहिए। यज्ञ में जो मिलता है जो बनता है प्यार से खाओ
जी।
तो जैसे फिक्स भी था और कोई अपना स्पेशल नहीं बनाते थे
जी 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 जी।
जो बीमार होते थे अलग बात होती थी, परंतु ऐसे नहीं खुद जाके बनाते थे
जी जी जी। मैं इस तरह की व्यवस्था,
बीमारों का भोजन भले कोई बनाता था और बनता भी था, परंतु सिंपल खाना
जी दीदी,
परंतु वैरायटी भी। और आज तक भी जैसे दादी प्रकाशमणि थी, उन्होंने भी ऐसे रखा था कि जो भी आते हैं, तो नया ग्रुप आता था ना, तो बाबा भी पूछते थे सब ठीक ठाक है, नींद ठीक आई, ब्लैंकेट वगैरह सब ठीक था, पूछते
जी,
थे
जी।
किसी को कुछ ठंडी लगती है तो एक्स्ट्रा ब्लैंकेट या रजाई दी जाती थी, तो बाबा भी सबको पूछते थे सब ठीक ठाक है। और बीच बीच में कचहरी भी चलती थी, जब शुरू शुरू में कचहरी भी होती थी, मामा बाबा बैठकर पूछते थे किसने किसको दुख दिया, किसने किसे दुख लिया
जी।
तो ये कचहरी भी होती थी, मतलब हर एक का ध्यान रहता था कि हम किसी को दुख न दे, और बाबा मम्मा दादियों का ध्यान रहता था सब कंफर्टेबल रहे
जी जी जी।
दादी प्रकाशमणि भी जब भी विदेशी आते थे पूछती थी क्या खाना है, डबल विदेशी कहते थे हमको पोटैटो चिप्स चाहिए, तो आलू की चिप्स बनवाती थी, कभी कहते थे समोसा चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए, तो जब बीबीपी स्पार की पिकनिक होती थी या अभी भी होती रही तब तक समोसा गुलाब जामुन पिकनिक में जरूर होगा।
दीदी बाबा के समय भी समोसा गुलाब जामुन बनता था
क्यों नहीं
जी 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 मतलब बाबा सब प्रकार की पालना करते थे।
हाँ
जी,
आइसक्रीम का संचा भी वो पुराने जमाने का था ना, आइस आस पास रख के घुमा कर बनाते थे। अभी तो मशीन हो गए हैं, मशीनों से काम चलता है, पर उन दिनों में आइसक्रीम का संचा भी रखते थे और खिलाते थे।
जी दीदी, दीदी हमने सुना है कि बाबा तो जैसे आपने बताया स्वागत करते थे सब बच्चों का और विदाई की बात बता रहे हैं। पहले हमने ऐसा सुना था दीदी कि बाबा वो पांडव वन के पीछे किचन के पीछे जो बरगद का झाड़ है वहां तक बाबा बच्चों को विदा करने जाते थे। वो आपने देखा था दीदी या सुने हैं कि वहां तक बाबा जाते थे, एक एक बच्चों को वहां विदा करते थे, लाल रुमाल होता था बाबा के हाथ में हिलाते थे और मुख में वो मिश्री और बादाम डालते थे और सब जो पार्टी वाले आते थे या बाबा के बच्चे आते थे वो एकदम यहां से जाते थे और घर का श्रृंगार जा रहा है गीत बजता था। क्या होता था दीदी उस समय?
क्योंकि मैं ब्रह्मा बाबा के सामने 64, 65, 66, 67 चार बारी गई होंगी मधुबन में
जी।
साल में हम एक बारी आते थे यहाँ।
हाँ।
क्योंकि उस समय हमारा डिस्पेंसरी भी था तो ग्रुप को लेकर साल में मार्च अप्रैल में जब बच्चों को छुट्टियां होती थी तब हम आते थे। तो जहां तक मुझे याद है हमने वही बाबा की ऑफिस में ही छुट्टी ली
जी।
बाकी रमेश भाई ने अपने जो अनुभव में सुनाया है कि उस समय बाबा पैर तक नीचे
जी
आते थे और रुमाल से छुट्टी देते थे।
जी।
तो समझो कई बार बाबा जाते भी होंगे
जी,
पर हमेशा नहीं।
वो बादाम मिश्री खिलाते थे दीदी ऐसा सुनते हैं, तो वो आपको बादाम मिश्री खिलाए कभी बाबा?
हाँ।
अच्छा, वो खिलाए?
वो तो बादाम मिश्री गोसुन कम सुन
जी,
बादाम मिश्री और इलायची
जी जी जी,
वो बाबा खिलाते थे सबको
जी। दीदी मम्मा के संबंध में जो प्रश्न है वो तो आपने जवाब दे दिया दीदी। एक प्रश्न और है दीदी कि साकार बाबा से सभी बहुत प्यार करते थे, जो भी बच्चे युवा जवान सब बाबा को बहुत प्यार करते थे और सभी को ऐसा महसूस होता था कि बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बाबा बच्चों को प्यार करते थे और बच्चे हर बच्चे को लगता था बाबा मेरे से प्यार करते हैं। बाबा किस तरह का बैलेंस रखते थे दीदी? बाबा का लौकिक परिवार भी साथ होते थे, अलौकिक परिवार भी होता था, कैसे जैसे किसी को यह नहीं लगता था दीदी कि मुझे मेरे से ज्यादा प्यार करते हैं बाबा?
सबको यही लगता था कि बाबा मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते
जी।
कभी किसी ने ये कंप्लेन नहीं की कि बाबा निर्मल शांता दादी से या ब्रिजेंद्रा दादी से आपने लौकिक बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं
जी।
उनकी दृष्टि लौकिक अलौकिक सबके साथ समान थी, न्यारा और प्यारा। भल दिल का प्यार किसी किसी से ज्यादा होता था
जी,
क्योंकि नेचुरली है जो सर्विसेबल है, आज्ञाकारी है, वफादार है, फरमान बरदार है, सर्विसेबल है, उनसे बाबा का अधिक प्यार होता था। परंतु फीलिंग सबको ऐसी आती थी, चाहे लुटेरा बाबा के सामने आए चाहे खूनी
जी,
क्योंकि कई है ऐसे भी जिन्होंने अज्ञानता में खून किया होता था और बाबा के सामने आए थे
जी,
परंतु बाबा ने मालूम होते भी फील नहीं होने दिया
जी।
कि बाबा जानते हैं तुम्हारा पास्ट
जी,
और बाबा का प्यार कम मिला हो ये नहीं। बाबा का प्यार सब बच्चों से समान होता था और सब समझते थे बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं।
जी दीदी, दीदी बस एक प्रश्न हो दीदी, बस लास्ट है ये। 2020 खट्टी मीठी यादें लेकर के जा रहा है दीदी। मैं समझता हूँ पहला साल होगा आपका कि आप कहीं यात्रा नहीं कर पाए। हर वर्ष दीदी 6 महीना यहाँ रहती है और 6 महीना पूरा विदेशों में चक्कर लगाती रहती है। ये 2020 अब विदाई होने वाला दीदी, 2020 को आप किस तरह से याद करना चाहेंगे और 2021 के लिए हम सबके लिए क्या प्रेरणा देना चाहेंगे?
हर दिन समान नहीं। 2020 में काफी परीक्षाएं आई, काफी अनसर्टेनिटी रही, मालूम नहीं था कि ये कोरोना कब पूरा होगा, और बढ़ता ही गया। परंतु हमने देखा कि बाबा के बच्चे सब अच्छा लड़ोल रहे हैं। कई बच्चों को कोरोना हुआ भी सही, कोई कोई ने शरीर भी छोड़ा
जी।
हमारी दादी ने, जानकी दादी ने कोरोना के बीच शरीर छोड़ा। तो क्या है कि सब विधि बदल गई, आना जाना सब बंद हो गया, परंतु हमने देखा सेवा बहुत हुई
जी।
जो वेबिनार हुए, सेमिनार हुए, कोर्सेस किए लाइन पर, जूम द्वारा कोर्सेस हुए, मुरलियां जूम द्वारा चलती है, तो जो लोग सेंटर पर नहीं आते थे अभी घर बैठे मुरली सुन सकते हैं। तो मुरली सुनने वालों की संख्या बढ़ गई, कोर्स करने वालों की संख्या बढ़ गई, और कईयों ने इंटरनेट द्वारा कोर्स करके मुरली के स्टूडेंट भी बन गए।
जी दीदी, तो ये पॉजिटिव बात है दीदी 2020 में।
इसलिए क्या है, बाबा कहते हैं ना, जो कुछ होता है उसमें
कल्याण
कल्याण भरा हुआ है
जी।
तो हम तो पॉजिटिव रीति से ही देखेंगे। अब भविष्य में हमको क्या करना है, तो भविष्य भी अनसर्टन है, कब तक ये चलेगा मालूम नहीं
जी।
परंतु एक बात अभी हमको ध्यान में रखनी है, विनाश कब भी हो सकता है, अपना मौत कभी भी हो सकता है। इसलिए बाबा जो कहते हैं एवर रेडी रहो, अपने आप को बाप समान बनाओ, तीव्र पुरुषार्थ करो। और संडे की मुरली में भी बाबा ने हमको अच्छा लेसन दिया
जी।
बीती को चिंतावना नहीं है, पास्ट को पास करना है और पास विथ ऑनर बनना है। प्रेजेंट हमको सबको देते रहना है, स्नेह, सद्भावना, शुभ भावना, जो भी बाबा से हमें खजाने मिले हैं उस खजानों की गिफ्ट देते रहो, सबको दाता बनकर देते रहो। और फ्यूचर के लिए बाबा ने कहा, अपने फीचर्स ऐसे बनाओ जो उनको अपने इष्ट देवता का दर्शन हो, शिव बाबा का दर्शन हो। आप दर्पण बन जाओ और बाप का उनको साक्षात्कार कराओ। तो मैं यही कहूंगी कि जो भी यहां आपने सुना है, क्योंकि सुना भी है और योग द्वारा कई खजाने जमा किए होंगे, तो वहां भी जाकर बाबा कहते हैं घर घर को मधुबन बनाओ। मधुबन में तो सब हमेशा रह नहीं सकते हैं, आते हैं उनको जाना है।
हम सब समझ सकते हैं दीदी, बहुत नियमों में पालन करते हैं और बिल्कुल दिनचर्या में व्यवस्थित रहती है दीदी। इस उम्र में भी 85 की उम्र में दीदी सुबह कई बार 4 बजे भी विदेशियों को क्लास कराती है, ऑनलाइन योग कराती है, तो साइंस के साधन है उसका भी दीदी जो है सदुपयोग करती है। इस उम्र में भी हम दीदी को देखते हैं सारे विश्व में अपने वाइब्रेशन फैलाती है, अपना कीमती समय निकाल करके हम सबके लिए समय दिए। एक बार दीदी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी ने अपना पूरा एक जीवन का अनुभव हमारे सामने रखे, मम्मा बाबा का दृश्य हमारे सामने ला दिए। और सचमुच जब जब जनवरी मास आता है तो हम सबके अलौकिक पारलौकिक पिता कैसे ब्रह्मा बाबा थे, उनकी स्मृतियां ताजी होने लग जाती है। तो दीदी ने अपना पूरा एक वृतांत अनुभव हमारे सामने रखे। दीदी आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सभी 2 मिनट बाबा को याद करेंगे।